अध्याय 20 परीक्षण निर्माण के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अर्थ एवं विशेषताएं मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। मनोविज्ञान तथा शिक्षा के शोधों में परीक्षण की अहमियत काफ़ी है। शब्दकोश के अनुसार तो परीक्षण से तात्पर्य प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला से होती है जिसके आधार पर कुछ सूचनाएं इकट्ठा की जाती हैं, परंतु मनोविज्ञान में परीक्षण का अर्थ कुछ और है। मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक परीक्षण को अधिक विस्तृत अर्थ में परिभाषित किया है। इन लोगों का कहना है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक ऐसा मानकीकृत विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति के एक या एक से अधिक मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन गुणात्मक ढंग से क्वालिटेटिवली या परिमाणात्मक ढंग से क्वांटिटेटिवली कुछ शाब्दिक या अशाब्दिक प्रतिक्रियाओं रिएक्शंस के माध्यम से होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उद्देश्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों को किसी एक मनोवैज्ञानिक शील गुण पर तुलना करना होता है, या फिर एक ही व्यक्ति के दो या दो से अधिक शील गुणों का आपस में तुलना की जाती है। पैराग्राफ चेंज। इन्हीं परिप्रेक्ष्य में मनोवैज्ञानिक परीक्षण की कुछ दी गई प्रमुख परिभाषाओं का उल्लेख यहाँ अनिवार्य है। कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के विचारों का उल्लेख हम इस प्रकार कर सकते हैं। पैराग्राफ चेंज। बीन 1953 के अनुसार कुछ मानसिक प्रक्रिया शील गुण या विशेषताओं का गुणात्मक मूल्यांकन करने या परिमाणात्मक ढंग से मापने के लिए उद्दीपनों का संगठित अनुक्रम ही मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। फ्रीमैन 1965 के अनुसार मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक मानकीकृत उपकरण होता है जिसके सहारे शाब्दिक या अशाब्दिक अनुक्रियाओं या अन्य व्यवहारों के सहारे संपूर्ण व्यक्तित्व के एक या अधिक पहलुओं को वस्तुनिष्ठ ढंग से मापा जाता है। अनकोट। सैक्स 1974 के अनुसार एक परीक्षण को ऐसे कार्य या कार्यों की श्रृंखला के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसके द्वारा ऐसे क्रमबद्ध परीक्षण प्राप्त होते हैं जो किसी मनोवैज्ञानिक या शैक्षिक गुण के प्रतिनिधित्व करते हैं। अनकोट। पैराग्राफ चेंज। इन परिभाषाओं का संयुक्त विश्लेषण करने पर हमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं जो इस प्रकार हैं। एक, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक मानकीकृत परीक्षण होता है जिसमें विश्वसनीयता, वैधता, प्राप्तांक लेखन में वस्तुनिष्ठता, मानक आदि गुण मूल रूप से होते हैं। यही कारण है कि बीम ने मनोवैज्ञानिक परीक्षण को उद्दीपनों का एक संगठित अनुक्रम माना है। दो, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना किसी शील गुण या मानसिक प्रक्रिया के एक या अनेक पहलुओं पर किया जाता है। तीन, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा व्यक्तियों के मानसिक प्रक्रियाओं या शील गुणों का मापन गुणात्मक या परिमाणात्मक होने दोनों ही ढंग से होता है। पैराग्राफ चेंज। स्पष्ट है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यक्तियों के बीच विभिन्नता अर्थात व्यक्तिक विभिन्नता का गुणात्मक या परिमाणात्मक मापन का एक मानकीकृत साधन होता है। पैराग्राफ चेंज। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकार टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने मनोविज्ञान तथा शिक्षा में प्रयोग होने वाले परीक्षणों को विभिन्न कसौटियों के आधार पर कई भागों में बांटा है जिनका वर्णन निम्नांकित है। एक, क्रियान्वयन की अवस्थाओं की कसौटी के आधार पर। इस कसौटी के आधार पर मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक परीक्षण को निम्नांकित दो भागों में बांटा गया है, एक व्यक्तिक परीक्षण तथा दो समूह परीक्षण। व्यक्ति परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिसे एक समय में एक ही व्यक्ति या क्रियान्वयन किया जा सकता है। इस तरह का परीक्षण दो को प्रायः स्कूल मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाताओं द्वारा छोटे छोटे बालकों को प्रेरित करने तथा उन्हें किसी प्रकार से परीक्षण परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करने आदि का अध्ययन के लिए किया जाता है। व्यक्तिक परीक्षण का क्रियान्वयन करने में परीक्षक को अधिक प्रशिक्षित होना अनिवार्य है तथा ऐसे परीक्षणों में परीक्षक को सामान्यतः अधिक ध्यान देना पड़ता है। कोई द्वारा निर्मित ब्लॉक डिजाइन बुद्धि परीक्षण व्यक्तिक परीक्षण का एक अच्छा उदाहरण है। समूह परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिसका क्रियान्वयन एक समय में सामान्यतः एक से अधिक व्यक्तियों पर यानी व्यक्तियों के समूह पर आसानी से किया जाता है। इस तरह के परीक्षण को क्रियान्वयन करने में हम प्रशिक्षित परीक्षक भी अच्छी भूमिका निभा लेते हैं। मोहन चंद्र जोशी द्वारा निर्मित मानसिक बुद्धि परीक्षण तथा एस चलोटा द्वारा निर्मित मानसिक बुद्धि परीक्षण समूह परीक्षण के अच्छे उदाहरण हैं। दो, प्राप्तांक लेखन की कसौटी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ स्कोरिंग। प्राप्तांक लेखन की कसौटी के आधार पर परीक्षण को निम्नांकित दो भागों में बांटा गया है, एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण तथा दो आत्मनिष्ठ परीक्षण। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिनके उत्तरों को अंक देने की विधि अर्थात प्राप्तांक लेखन विधि अस्पष्ट होती है और वह परीक्षकों के आत्मगत निर्णय से बिल्कुल ही प्रभावित नहीं होती है। ऐसे परीक्षणों के एकांशों के उत्तर का अंकन में सभी परीक्षक एक ही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। बहुविकल्पी एकांश, सही गलत एकांश तथा मिलान एकांश वाले परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं। पैराग्राफ चेंज, आत्मनिष्ठ परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिनके एकांशों के उत्तरों को अंक देने की विधि में परीक्षकों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। निबंधात्मक परीक्षा जिसका प्रयोग के शिक्षक कक्षा के उपलब्धियों की जांच करने में अक्सर करते हैं, आत्मनिष्ठ परीक्षण का अच्छा उदाहरण है। तीन, अनुक्रिया देने के समय सीमा की कसौटी के आधार पर परीक्षण के एकांशों के प्रति अनुक्रिया करने की समय सीमा के आधार पर परीक्षण को दो भागों में बांटा गया है, एक क्षमता परीक्षण तथा दो गति परीक्षण। क्षमता परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिनके सभी एकांशों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय परीक्षार्थियों को दिया जाता है। ऐसे एकांशों की कठिनता स्तर डिफिकल्टी लेवल भिन्न भिन्न होती है। इस परीक्षण का उद्देश्य यह मापना होता है कि व्यक्ति को किसी वस्तु, तथ्य, घटना आदि के बारे में कितना ज्ञान है। पैराग्राफ चेंज, गति परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिसमें एक सख्त समय सीमा होती है और उसके भीतर ही व्यक्तियों को सभी एकांशों का जवाब देना होता है। ऐसे परीक्षण के एकांश आसान होते हैं और उनकी कठिनता स्तर लगभग समान ही होती है। ऐसे परीक्षण का मूल उद्देश्य यह परख करना होता है कि कितनी तेजी से छात्र किसी कार्य को कर सकते हैं। अधिकतर लिपिक अभिक्षमता परीक्षण इसी श्रेणी के परीक्षण होते हैं। डैट डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट का गति परीक्षण का एक उत्तम उदाहरण है। सही अर्थ में बहुत कम ही परीक्षण पूर्णतः क्षमता परीक्षण या पूर्णतः गति परीक्षण होते हैं। एक ही परीक्षण एक छात्र के लिए गति परीक्षण का काम कर सकता है यदि उसके लिए प्रश्न आसान है, किंतु वही परीक्षण दूसरे छात्र के लिए जिन्हें उनके एकांश कठिन लगते हैं क्षमता परीक्षण का काम कर सकता है। चार, एकांशों या प्रश्नों के स्वरूप की कसौटी के आधार पर ऑन द क्राइटेरियन ऑफ द नेचर ऑफ आइटम्स और कंटेंट। इस कसौटी के आधार पर परीक्षण को निम्नांकित चार भागों में बांटा गया है, एक शाब्दिक परीक्षण, दो अशाब्दिक परीक्षण, तीन क्रियात्मक परीक्षण, चार अभाषाई परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिसमें एकांश आइटम्स एवं निर्देश इंस्ट्रक्शंस को व्यक्ति स्वयं पढ़ता है तथा फिर उसे समझकर उसका उत्तर देता है। ऐसे परीक्षण द्वारा उन क्षमताओं की माप होती है जिसमें पढ़ने एवं लिखने की अहमियत अधिक होती है। जलोटा सामूहिक सामान्य मानसिक क्षमता परीक्षण, जलोटा ग्रुप जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट तथा मेहता सामूहिक बुद्धि परीक्षण, मेहता ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इस परीक्षण के अच्छे उदाहरण हैं। इसे पेंसिल और कागज परीक्षण, पेपर एंड पेंसिल टेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति एकांशों के उत्तर को दिए गए उत्तर पत्र पर लिखता है। पैराग्राफ चेंज, अशाब्दिक परीक्षण, नॉन वर्बल टेस्ट वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिसमें शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की तुलना में भाषा लैंग्वेज पर कम बल डाला जाता है। ऐसे परीक्षण के निर्देश में तो भाषा का प्रयोग होता है परंतु एकांशों में भाषा का प्रयोग नहीं होता है। प्रत्येक एकांश में चित्र के सहारे एक समस्या उत्पन्न की जाती है और उसका उत्तर व्यक्ति को दिए गए चित्रों में से ही खोज कर निकालना होता है। रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो एक बुद्धि परीक्षण है और शाब्दिक परीक्षण का अच्छा उदाहरण है। पैराग्राफ चेंज, क्रियात्मक परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिसमें भाषा का प्रयोग निर्देश देने में हो सकता है या चित्राभिनय, पैंट्रोमाइम तथा हाव भाव जेस्चर द्वारा निर्देश देने पर भाषा का प्रयोग नहीं भी हो सकता है, परंतु इनके एकांश आइटम में भाषा का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता है और व्यक्ति के सामने कुछ वस्तुएं वास्तविक रूप से न कि चित्र के रूप में उपस्थित होती हैं, जिसमें जोड़ तोड़ करके उनका उत्तर ढूंढ निकालना होता है। प्रसिद्ध परीक्षण जैसे पास एलॉन्ग परीक्षण, पास एलॉन्ग टेस्ट, घन रचना परीक्षण आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। पैराग्राफ चेंज। अभाषाई परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिसमें भाषा का प्रयोग न तो एकांश में और न ही निर्देश देने में ही होता है। व्यक्ति को मात्र संकेत देकर प्रत्येक एकांश के सही उत्तर को बतलाना होता है। इस तरह ऐसा परीक्षण भाषा की चंगुल से पूर्णतः मुक्त होता है। कैटल कल्चर फ्री या फेयर परीक्षण जो एक बुद्धि परीक्षण है उसका अच्छा उदाहरण है। पाँच, माननीकरण की कसौटी के आधार पर। माननीकरण की कसौटी के आधार पर परीक्षण को निम्नांकित दो भागों में बांटा गया है, एक शिक्षक निर्मित परीक्षण तथा दो माननीकृत परीक्षण। शिक्षक निर्मित परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिसका प्रयोग शिक्षकों द्वारा कक्षाओं के भीतर ही छात्रों के निष्पादन की जाँच के लिए करते हैं। ऐसे परीक्षण द्वारा शिक्षक मूलतः एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्रों के निष्पादन का आपस में तुलना करते हैं। ऐसे परीक्षण के क्रियान्वयन तथा प्राप्तांक लेखन के तरीका स्वयं शिक्षक ही निर्धारित करते हैं। संभवतः ऐसे परीक्षण का कोई मानक तैयार नहीं किया जा सकता है, परंतु कभी कभी यह देखा गया है कि शिक्षक कक्षा के भीतर ही प्रयोग करने के लिए एक काम चलाऊ मानक तैयार कर लेते हैं। माननीकृत परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिसे परीक्षण विशेषज्ञ अन्य शिकारों एवं पाठ्यक्रमों विशेषज्ञों की मदद से तैयार करते हैं। ऐसे परीक्षण के क्रियान्वयन तथा प्राप्तांक लेखन का तरीका निश्चित एवं वस्तुनिष्ठ होता है तथा इसका एक मानक भी होता है। इसका परिणाम यह होता है कि इस परीक्षण का प्रयोग सभी तरह के छात्रों पर आसानी से किया जा सकता है और इसके परिणामों का आपस में वैज्ञानिक तुलना कर एक निश्चित निष्कर्ष पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। छः, उद्देश्य की कसौटी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ पर्पस और ऑब्जेक्टिव परीक्षण के को निम्नलिखित मुख्य चार भागों में बांटा गया है। एक, बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। ये बुद्धि परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों की बुद्धि को मापना होता है। बुद्धि परीक्षण शाब्दिक, अशाब्दिक, क्रियात्मक एवं अभाषाई कुछ भी हो सकता है। अभिक्षमता परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिसका उद्देश्य छात्रों की अभिक्षमता का मापन करना होता है। अभिक्षमता से तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्तियों के भीतर छिपा हुआ अन्य शक्ति से होता है। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसके द्वारा व्यक्तियों के सात तरह के अभिक्षमताओं का मापन होता है। इस तरह के परीक्षण का एक अच्छा उदाहरण है व्यक्तित्व परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिसके द्वारा व्यक्तियों के शील गुण, समायोजन, अभिरुचि मूल्य आदि का मापन होता है। ऐसे परीक्षणों का मनोविज्ञान तथा शिक्षा में भरमार है। वेल समायोजन परीक्षण, बेल्स एडजस्टमेंट इन्वेंटरी, आईजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली, आईजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर इसके अच्छे उदाहरण है। उपलब्धि परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी खास विषय या क्षेत्र में व्यक्तियों के अर्जित निपुणता को मापा जाता है। उपलब्धि परीक्षण भिन्न भिन्न विषयों के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। पैराग्राफ चेंज। इस तरह स्पष्ट हुआ कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण को भिन्न भिन्न कसौटियों के आधार पर भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। पैराग्राफ चेंज। एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएँ। किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण या शैक्षिक परीक्षण को उत्तम बतलाने के लिए यह आवश्यक है कि इसमें कुछ खास खास निश्चित गुण हो। इन गुणों या विशेषताओं में निम्नांकित प्रमुख हैं। एक, वस्तुनिष्ठता। किसी मनोवैज्ञानिक या शैक्षिक परीक्षण को उत्तम कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें वस्तुनिष्ठता का गुण हो। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य परीक्षकों के बीच आपसी सहमति से होता है। जब परीक्षण में वस्तुनिष्ठता होती है तो परीक्षक की अपनी इच्छा, पूर्वग्रह, पक्षपात आदि का प्रभाव परीक्षण पर नहीं पड़ पाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में वस्तुनिष्ठता दो प्रकार की होती है, एक एकांशों की वस्तुनिष्ठता, दो प्राप्तांकों लेखन की वस्तुनिष्ठता। इन दोनों प्रकार की वस्तुनिष्ठता का वर्णन इस प्रकार है, एक एकांशों की वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम्स। एकांशों की वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य होता है कि परीक्षण के एकांश इस प्रकार के हों कि सभी व्यक्ति उससे एक ही तरह के अर्थ निकाल सकें। यह तभी हो सकता है कि जब सभी एकांश आइटम्स स्पष्ट और सरलतम शब्दों में लिखे गए हों, अर्थात उनमें किसी तरह की कोई अस्पष्टता नहीं हो। इतना ही नहीं, एकांशों में पूर्ण वस्तुनिष्ठता के लिए प्रशिक्षण निर्माता इन एकांशों का एकांश विश्लेषण भी करता है। एकांश विश्लेषण एक ऐसी सांख्यिकीय प्रविधि है जिसके द्वारा वैसे एकांशों को जो अच्छे नहीं हैं तथा जो उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं छांट दिया जाता है, और सिर्फ वैसे ही एकांशों को चुना जाता है जो अच्छे हैं और जो उस परीक्षण के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। दो, प्राप्तांक लेखन या अंकन की वस्तुनिष्ठता। प्राप्तांक लेखन या अंकन की वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य यह होता है कि एकांशों का प्राप्तांक लेखन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि परीक्षक का अपना पूर्वाग्रह उसे प्रभावित न कर सके। प्राप्तांक लेखन में वस्तुनिष्ठता रहे, इसके लिए परीक्षण निर्माणकर्ता प्रत्येक एकांश के लिए एक निश्चित उत्तर तैयार करता है और साथ ही साथ उस निश्चित उत्तर के लिए जाने पर एक निश्चित अंक जैसे +1 या +2 आदि तथा उस उत्तर के जगह पर कोई दूसरा उत्तर देने पर जो गलत होता है 0 या -1 या -2 अंक देने का प्रावधान करता है। इस ढंग का प्रावधान कर देने से प्राप्तांक लेखन या अंकन स्कोरिंग पूर्णतः वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव हो जाता है और परीक्षणकर्ता टेस्ट के पूर्वग्रह प्रेजुडिस का प्रभाव अंक पर नहीं पड़ता है। पैराग्राफ चेंज। दो, विश्वसनीयता रिलायबिलिटी। किसी भी उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइकोलॉजिकल टेस्ट की एक विशेषता उसकी विश्वसनीयता होती है। विश्वसनीयता से तात्पर्य परीक्षण का स्व सह संबंध से होता है। परीक्षण में स्व सह संबंध होने से प्राप्तांकों की संगति अधिक होगी और तब परीक्षण की विश्वसनीयता अधिक होगी। विश्वसनीयता के दो प्रमुख पहलू होते हैं, कालिक स्थिरता टेम्पोरल स्टेबिलिटी तथा आंतरिक संगति इंटरनल कंसिस्टेंसी। जब कोई परीक्षण किसी एक ही प्रतिदर्श पर दो बार क्रियान्वयन किया जाने पर संगत परिणाम देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में परीक्षण प्राप्तांक में कालिक स्थिरता अधिक होती है और उसकी विश्वसनीयता भी अधिक होती है। ठीक इसी तरह जब कोई परीक्षण के सभी एकांशों द्वारा एक बार के क्रियान्वयन में संगत परिणाम प्राप्त किए जाते हैं तो इस तरह के परिणाम में आंतरिक संगति अधिक होती है और इसकी भी विश्वसनीयता अधिक होती है। स्पष्ट हुआ कि परीक्षण की विश्वसनीयता एक ऐसा गुण होता है जिसमें परीक्षण प्राप्तांक की कालिक स्थिरता तथा आंतरिक संगति दोनों ही सम्मिलित होते हैं। परीक्षण की विश्वसनीयता को सहसंबंध गुणांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह गुणांक जितना ही अधिक होता है, जैसे 0.75, 0.85, 0.92 आदि, परीक्षण प्राप्तांक की विश्वसनीयता उतनी ही अधिक समझी जाती है। तीन, वैधता वैलिडिटी। वैधता मनोवैज्ञानिक परीक्षण का तीसरा प्रमुख अपेक्षित गुण है। जब कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण ठीक उसी गुण या क्षमता को अच्छे ढंग से मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, तब परीक्षण के इस गुण को वैधता की संज्ञा दी जाती है। एनास्टेसी 1968 ने परीक्षण की वैधता को इसी ढंग से परिभाषित करते हुए कहा है कि परीक्षण की वैधता का संबंध इस बात से होता है कि परीक्षण क्या मापता है और कितना स्पष्ट रूप से उसे मापता है। किसी भी परीक्षण को एक बाह्य कसौटी के साथ सहसंबंधित किया जाता है। प्राप्त सहसंबंध गुणांक जितना ही अधिक होता है, परीक्षण को उतना ही वैध समझा जाता है। जब किसी परीक्षण में वैधता अधिक होती है तो उसे एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण या शैक्षणिक परीक्षण माना जाता है। चार, मानक नॉर्म्स। किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण को एक उत्तम एवं दुरुस्त परीक्षण कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसका एक मानक नॉर्म्स हो। किसी प्रतिनिधिक प्रतिदर्श के परीक्षण पर आए औसत प्राप्तांक की उस परीक्षण का मानक की संज्ञा दी जाती है। मानक का उद्देश्य परीक्षण पर आए मूल्य प्राप्तांकों की व्याख्या करना होता है। बिना मानक के परीक्षण पर आए मूल प्राप्तांकों से कोई अर्थ निकालना संभव नहीं है। फलस्वरूप बिना मानक के परीक्षण पर मिले प्राप्तांक अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षण पर 50 प्राप्तांक आए। जब इस 50 का अर्थ है इसे समझना कठिन है। क्या यह व्यक्ति अधिक बुद्धि का है या कम बुद्धि का है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। परंतु यदि इसके मानक से हम उस प्राप्तांक की तुलना करते हैं और उसके बाद यदि यह पाते हैं कि वह प्राप्तांक पर आ रहा है, तो इससे स्पष्ट अर्थ हम निकाल लेते हैं कि इस व्यक्ति की बुद्धि औसत से ऊपर है, क्योंकि इससे सैकड़े 90 आदमी का प्राप्तांक कम है, अर्थात सिर्फ 10 आदमी का प्राप्तांक इससे ज़्यादा आया है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में मानक के कई प्रकार होते हैं, जैसे आयु मानक, वर्ग मानक, शततमक मानक तथा प्रामाणिक प्राप्तांक मानक। इन मानकों में से कोई भी मानक को परीक्षणकर्ता बनाता है और परीक्षण को एक मानकीकृत परीक्षण का दर्जा देता है। 5, व्यवहारिकता। ये एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण में व्यवहारिकता का गुण या विशेषता होनी चाहिए। परीक्षण को व्यवहारिक रूप से सुगम होना चाहिए। इसे क्रियान्वयन में कम समय लगना चाहिए। एकांशों की संख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति उसका उत्तर देने में ऊब महसूस करे। परीक्षण की अंकन विधि, स्कोरिंग मेथड सरल हो आदि। इन व्यवहारिक गुणों के होने से मनोवैज्ञानिक परीक्षण की उपयोगिता बढ़ जाती है और उसे एक उत्तम परीक्षण में शामिल कर दिया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण या शैक्षिक परीक्षण को एक उत्तम परीक्षण कहलाने के लिए उसमें कम से कम उपयुक्त 5 गुणों का होना अनिवार्य माना गया है। पैराग्राफ चेंज। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का महत्व या उपयोगिताएँ। इम्पॉर्टेंस और यूटिलिटीज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किसी व्यक्ति के एक या एक से अधिक शील गुणों, आदतों या मानसिक प्रक्रियाओं को गुणात्मक या परिमाणात्मक रूप से अपने का एक मानकीकृत प्रविधि है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण चाहे बुद्धि परीक्षण हो, व्यक्तित्व परीक्षण हो, अभिक्षमता परीक्षण हो या अन्य कोई परीक्षण हो, उसका मूल उद्देश्य व्यक्तियों के बीच विभिन्नता अर्थात व्यक्तिक विभिन्नता याद करना होता है। इसके अलावा आजकल मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग जीवन के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी काफ़ी किया जा रहा है। इससे इसकी उपयोगिता एवं महत्व काफ़ी बढ़ गया है। ऐसी ही कुछ उपयोगिताओं एवं महत्वों का वर्णन निम्नांकित है। 1, नियोजन के लिए चयन के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रयोग। विभिन्न सेवाओं में व्यक्तियों के लिए चयन करने एवं नियुक्तियों करने में काफ़ी किया जा रहा है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रयोग कर मनोवैज्ञानिक वैसे व्यक्तियों को आसानी से चुन लेते हैं जिनकी रुचि, रुझान एवं क्षमता आदि उस पद के लिए अनुकूल होती है जिसके लिए उसका चयन किया जा रहा है। 2, निर्देशन के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक परीक्षण का महत्व। विभिन्न तरह के निर्देशनों जैसे शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन तथा व्यक्तिगत निर्देशन में अधिक बतलाया गया है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के सहारे छात्रों को अपनी रुचि एवं रुझान के अनुकूल शिक्षा के लिए विषयों का चयन करने में तथा फिर शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्हें अपनी निपुणता एवं योग्यता के अनुकूल व्यवसाय खोजने में काफ़ी मदद मिलती है। इतना ही नहीं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के सहारे व्यक्ति अपने भीतर व्याप्त सांवेगिक तनावों एवं मानसिक संघर्षों को भी समझ पाता है और उसे कम करने के लिए सक्रिय हो उठता है। 3, पूर्वानुमान या पूर्व कथन में इन मेकिंग प्रिडिक्शन। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से शोधकर्ताओं को कुछ पूर्वानुमान लगाने में भी सफलता मिलती है। कोई मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति की बुद्धि, अभिक्षमता आदि का मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा जांच कर उसकी भावी सफलताओं के बारे में पूर्वानुमान आसानी से लगा पाता है। यदि किसी व्यक्ति का अंक बुद्धि परीक्षण तथा अभिक्षमता परीक्षण पर ऊंचा आता है तो मनोवैज्ञानिक काफ़ी आसानी से यह पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि वह व्यक्ति तीव्र बुद्धि का है या उससे संबंधित अभिक्षमता काफ़ी अधिक है, अतः वह अमुक कार्य के लिए योग्य है। 4. शोध के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ रिसर्च मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा नए नए सिद्धांतों तथा प्रविधियों के शोध में काफ़ी मदद मिलती है। गुलिकसन मनोवैज्ञानिक परीक्षण का शोध के साथ दोहरा संबंध बतलाया है। बहुत से मनोवैज्ञानिक परीक्षण शोध के फलस्वरूप पैदा हुए हैं तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर बहुत से नए नए सिद्धांतों का जन्म हुआ है जिन पर शोध किया जा रहा है। इस तरह शोध एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षण का संबंध दोहरा है। 5. निदान के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ डायग्नोसिस मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा मनोवैज्ञानिकों को निदान में काफ़ी मदद मिलती है। निदान से तात्पर्य एक ही व्यक्ति के व्यवहार के विभिन्न पहलुओं की विवेचना तथा विश्लेषण से होता है। एक शैक्षिक या मनोवैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर विशेषज्ञ आसानी से इस बात का निदान कर लेते हैं कि काफ़ी बुद्धि के बावजूद किसी छात्र का वर्ग में कार्य निष्पादन क्यों खराब हो रहा है। इसी तरह के एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर आसानी से इस बात का निदान कर लेता है कि अमुक व्यक्ति किसी प्रकार के मानसिक रोग से ग्रसित है या नहीं। पराचेंज इस तरह से हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण की कई उपयोगिताएं हैं। शायद यही कारण है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पैराग्राफ चेंज मनोवैज्ञानिक या शैक्षिक परीक्षण के निर्माण के महत्वपूर्ण सामान्य चरण इम्पॉर्टेंट जनरल स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल टेस्ट। यह ठीक ही कहा गया है कि मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षा के शोध रूपी गाड़ी की पहिया परीक्षण है। परीक्षण के अभाव में इन दोनों संबंधित विज्ञानों में अर्थपूर्ण ढंग से शोध नहीं किया जा सकता है। अतः यह आवश्यक है कि हम उन सभी प्रमुख चरणों से अवगत हों जिनके माध्यम से एक मनोवैज्ञानिक या शैक्षिक परीक्षण का निर्माण किया जाता है। ऐसे प्रमुख चरणों स्टेप्स को निम्नांकित 7 भागों में बांटा गया है। पैराग्राफ चेंज 1. परीक्षण की परियोजना प्लानिंग ऑफ द टेस्ट 2. एकांश लेखन आइटम राइटिंग 3. परीक्षण की प्रारंभिक क्रियान्वयन या प्रयोगात्मक क्रियान्वयन 4. परीक्षण की विश्वसनीयता 5. परीक्षण की वैधता 6. परीक्षण का मानक 7. परीक्षण का मैनुअल तैयार करना एवं पुनरुत्पादन करना। इन सभी चरणों की व्याख्या निम्नांकित है। 1. परीक्षण की परियोजना किसी भी मनोवैज्ञानिक या शैक्षिक परीक्षण के निर्माण में सबसे पहला कदम एक परियोजना बनाना होता है। इस चरण में परीक्षणकर्ता कई बातों का निर्णय करता है, जैसे वह यह निश्चित करता है कि परीक्षण का उद्देश्य क्या है, इसमें एकांशों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एकांश का स्वरूप अर्थात उसे वस्तुनिष्ठ या आत्मनिष्ठ होना चाहिए, किस प्रकार का निर्देश दिया जाना चाहिए, प्रतिदर्श की विधि क्या होनी चाहिए, परीक्षण की समय सीमा कितनी होनी चाहिए, सांख्यिकीय विश्लेषण कैसे की जानी चाहिए आदि आदि। इस चरण में परीक्षण निर्माता इस बात का निर्णय कर लेता है कि परीक्षण निर्माण हो जाने के बाद वह कितनी संख्या में उस परीक्षण का निर्माण करेगा। एक उदाहरण मान लिया जाए कि शोधकर्ता किशोरों की बुद्धि मापने के लिए एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में वह निर्णय करेगा कि इस परीक्षण में कुछ 100 एकांश होंगे जो सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा वस्तुनिष्ठ एकांश को बहुविकल्पी प्रकार के रूप में तैयार किया जाएगा। परीक्षण प्रारंभ होने के पहले दिए जाने वाले निर्देश को स्पष्ट शब्दों में वह लिख लेगा। वह यह भी निर्णय कर लेगा कि परीक्षण के निर्माण हो जाने पर परीक्षण की कुल 1000 या ज़रूरत के अनुसार और भी ज़्यादा या कम संख्या में कॉपी तैयार करेगा तथा मैनुअल की 50 कॉपी तैयार कर लेगा। 2. एकांश लेखन आइटम राइटिंग परीक्षण की परियोजना तैयार कर लेने के बाद परीक्षण निर्माता एकांशों को लिखना प्रारंभ कर देता है। बीन 1953 के शब्दों में कोट एकांश से तात्पर्य एक ऐसा प्रश्न या पाठ होता है जिससे प्रायः छोटी इकाइयों में नहीं बांटा जाता है। अनकोट जैसे क्या आपको अनिद्रा की शिकायत है एक एकांश का उदाहरण है जिसे अब छोटी इकाइयों में नहीं बांटा जा सकता। एकांश लेखन एक कला है। ऐसे तो उत्तम एकांश लिखने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है, फिर भी एकांश लेखन बहुत हद तक परीक्षण निर्माणकर्ता के कल्पना अनुभव सूझ अभ्यास आदि कारणों पर निर्भर करता है। इसके बावजूद भी शोधकर्ताओं ने कुछ ऐसे अपेक्षित गुणों की चर्चा की है जिससे शोधकर्ता को उपयुक्त एकांश लिखने में मदद मिलती है। ऐसे कुछ अपेक्षित गुणों का वर्णन निम्नांकित है। एक, एकांश लेखक को विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरे शब्दों में जिस क्षेत्र में परीक्षण का निर्माण किया जा रहा है उस क्षेत्र के सभी तथ्यों, नियमों, भ्रांतियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दो, एकांश लेखन को उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व से पूर्णतः वाकिफ होना चाहिए जिनके लिए परीक्षण का निर्माण किया जा रहा है। इन व्यक्तियों की क्षमताओं, रुझानों आदि से अवगत रहने पर एकांश लेखक के लिए उनके मानसिक स्तर के अनुरूप एकांश लिखना संभव हो पाता है। तीन, एकांश लेखक को एकांश के विभिन्न प्रकारों जैसे आत्मनिष्ठ प्रकार, वस्तुनिष्ठ प्रकार तथा फिर वस्तुनिष्ठ प्रकार के कई उप प्रकार जैसे द्वि वैकल्पिक एकांश, बहुवैकल्पिक एकांश, मिलान एकांश आदि के लाभ एवं हानियों से पूर्णतः अवगत होना चाहिए। चार, एकांश लेखक का शब्दकोश बड़ी होनी चाहिए। वह एक ही शब्द के कई अर्थ से अवगत हो ताकि एकांश लेखन में किसी प्रकार की कोई संभ्रांति नहीं हो। पाँच, एकांश लेखन पर कर लेने के बाद उन एकांशों की विशेषताओं के एक समूह को सुपुर्द कर देना चाहिए। उनके द्वारा की गई आलोचनाओं एवं दिए गए सुझावों के आलोक में एकांश के स्वरूप में या संरचना में यथासंभव परिवर्तन कर लेना चाहिए। छः, एकांश लेखन लेखक में कल्पना करने की शक्ति की प्रचुरता होनी चाहिए। एक उदाहरण, अब वह बुद्धि परीक्षण के सभी 100 एकांशों को लिखेगा। एकांश लिखने के पहले वह मोटे तौर पर यह निश्चित कर लेगा कि बुद्धि के परीक्षण का स्वरूप शाब्दिक होगा या अशाब्दिक होगा या क्रियात्मक होगा या अभाषायी होगा। मान लिया जाए कि वह यह निर्णय करता है कि बुद्धि परीक्षण का स्वरूप शाब्दिक होगा, अतः वह शाब्दिक एकांशों को लिखेगा जिससे कुछ नमूने इस प्रकार हैं। एक, नीचे के शब्दों में जो सबसे भिन्न है उस पर सही का चिन्ह लगा दें। अ, आम, व, सेब, सौ, पपीता, द, कटहल, ई, नारंगी। अ, बम्बई, व, कलकत्ता, स, मद्रास, द, दिल्ली, ई, बेंगलुरु। दो, मोहन सोहन का पिता है, राम मोहन की पत्नी का पिता है, राम सोहन का संबंध में क्या लगेगा। अ, दादा, व, नाना, स, मामा, द, चाचा, ई, कोई नहीं। तीन, पटना से कानपुर 500 किलोमीटर आगे है, इलाहाबाद 200 किलोमीटर कानपुर से पीछे है। पटना से इलाहाबाद की कितनी दूरी है। अ, 300 किलोमीटर, व, 700 किलोमीटर, स, 400 किलोमीटर, द, 600 किलोमीटर, ई, 1000 किलोमीटर। पैराग्राफ चेंज। इसी तरह से मान लिया जाए कि 100 एकांश बना लिया गया है और उसे 5 विशेषज्ञों जो सभी मनोविज्ञान के शिक्षक थे को इस प्रार्थना के साथ दे दिया गया है कि आप एकांशों की सत्यता की परख करें और जो कुछ भी उन्हें उन्नत बनाने के लिए सुझाव देना है देकर लौटा दें। तीन, परीक्षण का प्रारंभिक क्रियान्वयन या प्रयोगात्मक क्रियान्वयन। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के निर्माण में तीसरा महत्वपूर्ण कदम परीक्षण के प्रारंभिक क्रियान्वयन का होता है, जिसे प्रयोगात्मक क्रियान्वयन भी कहा जाता है। जब परीक्षण के एकांशों की विशेषज्ञों द्वारा आलोचनात्मक परख कर ली जाती है तो इसके बाद उसका कुछ व्यक्तियों पर क्रियान्वयन एडमिनिस्टर किया जाता है। जैसे क्रियान्वयन को प्रयोगात्मक क्रियान्वयन कहा जाता है, ऐसे प्रयोगात्मक क्रियान्वयन की सफलता के लिए यह अनिवार्य है कि चुने गए व्यक्तियों का प्रतिदर्श का स्वरूप ठीक वैसा ही हो जिसके लिए परीक्षण बनाया जा रहा हो। कॉनरेड 1951 के अनुसार प्रारंभिक क्रियान्वयन कुछ खास खास उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इन उद्देश्यों में निम्नांकित प्रधान है। एक, एकांशों में यदि कोई अस्पष्टता, अपर्याप्तता, अर्थहीनता आदि रह गई हो तो इसका आसानी से पता प्रारंभिक क्रियान्वयन से कर लिया जाता है। दो, इससे प्रत्येक एकांश की कठिनता स्तर का पता चल जाता है। प्रत्येक एकांश पर जितने व्यक्तियों द्वारा सही उत्तर दिया जाता है उसका अनुपात ही एकांश की कठिनता स्तर होता है। तीन, इससे प्रत्येक एकांश की वैधता का पता भी लग जाता है। एकांश की वैधता से तात्पर्य उत्तम व्यक्तियों तथा निम्न व्यक्तियों में विभेद करने की क्षमता से होता है। यही कारण है कि इसे एकांश का विभेदी सूचकांक भी कहा जाता है। 4, इससे परीक्षण की समय सीमा निर्धारित करने में मदद मिलती है। 5, परीक्षण को उपयुक्त लंबाई नियत करने में भी मदद मिलती है। 6, प्रारंभिक क्रियान्वयन के आधार पर एकांशों के बीच अंतर सह संबंध ज्ञात करने में भी मदद मिलती है। 7, परीक्षण को साथ दिए जाने वाले मानक निर्देश की अस्पष्टता, अर्थहीनता आदि कोई हो आदि की जांच में भी इससे मदद मिलती है। पैराग्राफ चेंज, प्रारंभिक क्रियान्वयन द्वारा इन विभिन्न तरह के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कॉनरेड 1951 ने कम से कम 3 बार परीक्षण को नए नए प्रतिदर्श पर क्रियान्वयन करने की सिफारिश की है। पहले क्रियान्वयन के लिए व्यक्तियों की संख्या 100 से कम नहीं होनी चाहिए। इसे प्रक्रियान्वयन कहा जाता है, इस जिसका उद्देश्य एकांशों तथा निर्देशों में छिपी किसी तरह की अस्पष्टता का पता लगाना होता है। दूसरा, क्रियान्वयन के लिए व्यक्तियों की संख्या 400 के करीब या कम से कम 370 अवश्य होनी चाहिए। इसे खास क्रियान्वयन कहा जाता है, जिसका उद्देश्य एकांश विश्लेषण के लिए आंकड़े इकट्ठा करना होता है। एकांश विश्लेषण करने से परीक्षण निर्माता को अन्य बातों के अलावा प्रत्येक एकांश के बारे में 2 तरह के सूचकांक का पता चल जाता है, कठिनाई सूचकांक तथा विभेदन सूचकांक, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। कठिनाई सूचकांक से यह पता चलता है कि एकांश व्यक्ति के लिए कठिन है या हल्का है, या विभेदक या विभेदन सूचकांक से यह पता चल जाता है कि कहाँ तक एकांश उत्तम व्यक्तियों और निम्न व्यक्तियों में अंतर कर रहा है। इन दोनों महत्वपूर्ण सूचकांकों के अलावा एकांश विश्लेषण द्वारा प्रत्येक एकांश के उत्तर के रूप में किए गए विकल्पों अल्टरनेटिव्स की प्रभावशीलता इफेक्टिवनेस का भी पता चल जाता है। तीसरा, क्रियान्वयन कुछ व्यक्तियों पर इस उद्देश्य से किया जाता है कि अंत में उन त्रुटियों